कोई भी काम किया जाता है तो उसके पहले संकल्प किया जाता है। संकल्प का मतलब है सम्यक प्रकार की कल्पना। इसलिए गणेशाय नमः करके, भगवत स्मरण करके, कौन से स्थान पे क्या कर्म करना उचित है, किस समय ये कर्म किया जाए, तीसरी बात क्या क्या करना है, कितने दिनों में पूर्ण करना है, और ये कर्म हमारी मन की उच्छलंगता के लिए है, वासना बढ़ाने के लिए है कि वासना निवृत्त करने के लिए है, ये हमारा कर्म ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य में है कि ईश्वर से विमुख करने वाला होगा, बड़ों की आज्ञा से है कि मनमानी गति से हम मारे जा रहे हैं, कितना हमारा दृढ़ निश्चय है कर्म में लगे रहने का, फल कौन सा आएगा, स्थाई आएगा कि नश्वर आएगा, अंतरात्मा की नालत मिलेगी कि धन्यवाद मिलेगी, ये सब विचार करके फिर कर्म करना, इसका मतलब है संकल्प कर। अरे स्नान भी करते हरिद्वार तो भारत भूमि उत्तराखंडे गंदंडा गंगा तटे हरिद्वार क्षेत्रे है, कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी दिवसे अतः हम स्नानम करीशे। किस निमित्त कर रहे हैं, आत्मशुद्धि भगवत प्राप्ति अर्थे, तो उसका फल होता है ज्यादा। कुत्ता रात भर भौंकते रहते गांव में, क्यों भौंका बोले वो भौंका, वो क्यों भौंका वो क्यों भौंका वो, मूल पुरुष मूल कुत्ता एक भौंका और सारी रात भौं भौं करते रहते, पता नहीं, तो ये निष्प्रयोजन कर्म हो जाते। तो प्रयोजन पूर्वक कर्म होने चाहिए, और प्रयोजन भी एक तो वासना पूर्ति का होता है, वो संसार में भटकाता है, और दूसरा प्रयोजन होता है वासना निवृत्ति का, भोग तो भोग लेकिन वासना बढ़ाने के लिए नहीं, वासना निवृत्त के लिए, धन तो इकट्ठा करे लेकिन धन में डूब मरने के लिए नहीं, धन का सत उपयोग करे, सत के लिए धन का उपयोग करे, सत तो एक परमात्मा है। जैसे कुएं में से पानी निकालते जाते हो तो कुएं में ट्यूबवेल में ताजा पानी आता रहता है, ऐसे सत को सुख को आनंद को ज्ञान को बांटते जाते हो तो सत चित्त और आनंद आपका निखरता जाता है। सभी के अंदर परमात्मा है और सभी परमात्मा को पा सकते हैं, फिर भी आज सुबह बताया था कि ईश्वर को पाना जितना सरल है ऐसा कोई काम सरल नहीं है, ईश्वर को पाना सबसे सरल में सरल काम है और कठिन भी वह उतना ही है ईश्वर को पाना, क्योंकि वासना से प्रेरित होकर जीते हैं तो ईश्वर असंभव हो जाता है, कठिन हो जाता है, और शास्त्रों सद्गुरु से प्रेरित होकर करते हैं तो ईश्वर को पाना सरल हो जाता है। तो ये सारी बातें सत्संग से सम्यक कल्पना, घर से चले थे संकल्प करके आश्रम में आना है तो गाड़ी से जाएंगे, बस से जाएंगे, स्कूटर से जाएंगे, स्कूटर कहाँ रखेंगे, गाड़ी कहाँ रखेंगे, ये कल्पना हो जाती है, फिर क्या ले जाएंगे, कितनी देर तक बैठेंगे, बापूजी होंगे कि नहीं होंगे, बाहर आए होंगे कि नहीं आए होंगे, अच्छा दर्शन करके लाइन में लगे तो कितना ही धीरज रखनी पड़ेगी, तो सम्यक प्रकार की कल्पना से आते तो उनको तो ठीक होता, बाकी चल पड़े, बापूजी अंदर गए तब बेटे पहुँचे, और बापूजी जब बाहर आने वाले थे तो बेटे घर पहुँच गए, ऐसा बनता है, कईयों को बनता है, जिनको बनता है ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, होता है। तो जो काम करो सम्यक प्रकार की कल्पना संकल्प करके करो, और उस संकल्प में भगवत स्मरण शास्त्र की आज्ञा और श्रेष्ठ जनों का मंगल आशीर्वाद मिले इस भाव से करना चाहिए, तो आदमी के लिए ईश्वर प्राप्ति खेल हो जाता है, आसान हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति का मतलब क्या कि आप बैठे रहेंगे और कोई आ जाएगा दो हाथ पैर वाले या चतुर्भुजी, ना, ईश्वर प्राप्ति का मतलब है रसो वै स वैश्वानरो, वह रस स्वरूप भगवत स्वभाव आपका प्रकट होगा, जैसे सत्ता है ज्ञान है ऐसा उस परमात्मा में रस भी है, परमात्मा सत्ता है उससे तो परमात्मा ज्ञान है उससे तो आपकी इंद्रियां मन बुद्धि सब देखते करते हैं, तो परमात्मा का अस्तित्व है, चेतनत्व है, अस्तित्व का नाम है सत, और उसकी चेतना है तो सत्य चित्त और आनंद। तो निकम्मा आदमी तो जड़ता को प्राप्त होता है, आलसी होता है। जो कर्म करता है उसकी बुद्धि का भी विकास होता है, रस का भी विकास होता है। जो कर्म में लगा रहता है उसकी बुद्धि का भी विकास होता है, रस का भी विकास होता है। आलस्य कबहु न कीजिए, आलस्य अरि समुझाने, आलस्यते विद्या घटे बल बुद्धि की होत हानि। तो इस आलस्य से तो कुछ न कुछ करना अच्छा है, और कुछ न कुछ करने की अपेक्षा सात्विक कर्म करना, करने की रुचि का अंत करके जिससे किया जाता है उस नैष्कर्म सिद्धि का रस उभारने की कला आ जाए। तो जैसे अस्थि सबके हृदय में है, चेतना सबके हृदय में, ऐसे आनंद प्रेम भी सबके हृदय में। लेकिन प्रेम जब एक परिस्थिति में फंसता है अथवा प्रेम उछलंक होता है तो दैत्य, आसुरी, राक्षसी, मोहिनी प्रकृति वाले हो जाते लोग। जैसे रावण का प्रेम सत्ता में गंदा हो गया तो रावण राक्षस कहलाया। किसी का प्रेम लेना न देना और किसी को सताने में हो जाता है तो वो मोहिनी प्रकृति में आ गया। तो तुम्हारा प्रेम किसी खड्डे में, किसी नाली में, किसी गंदगी में तुम्हारी जीवन की धारा न गिरे, इसका नाम है धर्म। धर्म आपकी वृत्ति को, आपकी वासना को, आपकी योग्यताओं को ऊंचे सुख के तरफ ले जाता है। शाश्वत ज्ञान, शाश्वत जीवन और शाश्वत सुख के तरफ ले जाने की व्यवस्था का नाम है धर्म। यतो धर्म ततो अभ्युदय। जहां धर्म है वहां अभ्युदय है। अग्नि का धर्म है उष्णता, अगर उष्णता चली जाए तो अग्नि किस बात की। पानी का धर्म है शीतलता, शीतलता चली गई तो अब गर्म शब्द रख के फिर बोलोगे गर्म पानी है, फिर उसको छोड़ दो तो पानी अपने धर्म में आ जाएगा। बर्फ बना दिया फिर छोड़ दो तो अपने धर्म में आ जाएगा। उबाल दिया और छोड़ दो तो अपने धर्म में आ जाएगा शीतलता में, समता। तो भगवान कहते थोड़ा सा भी जो धर्म का पालन करता है उसका फिर अमंगल नहीं होता, विनाश नहीं होता। स्वल्पम अपि धर्म त्रायते मातुक, बहुत भारी रक्षा करता है। तो धर्म का पालन, बोले महाराज मैं अपना धर्म का पालन करता हूँ, नौकरी पे जाता हूँ, मैं अपना धर्म का पालन करता हूँ, फलाना करता हूँ। श्री कृष्ण जिस धर्म की बात करते हैं वो तुम्हारा वासना पूर्ति के नाम को धर्म नहीं कह रहे, तुम्हारे रस स्वरूप में विश्रांति को धर्म कह रहे। श्री कृष्ण कहते हैं नेहा भी कर्मनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवत गीता दूसरा अध्याय 40वां श्लोक। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। इस धर्म के रास्ते थोड़ा सा समबुद्धि रूप धर्म के रास्ते कोई चले फिर किसी कारण से बिखर भी गया तभी भी उसका पुण्य और उसका वो रस नाश नहीं होता, उसका रस उधर को उसको उधर ले आएगा। इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। जैसे तांत्रिक कुछ करते तो उल्टा फल भी हो जाता है, सकाम कर्म करते तो उल्टा फल भी हो जाता है। लेकिन इस समतारूपी धर्म के पालन से थोड़ा सा भी अनुष्ठान करने वाले का जन्म मृत्यु रूपी महाभय से रक्षा करने वाला होता है। भगवान ने कहा नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इस कल्याणमय धर्म का पालन करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। अर्जुन ने पूछा कि भगवान संसार से थोड़ा सा मन हटाकर भक्ति में ज्ञान में सेवा में परोपकार में जप में लग जाए और ईश्वर नहीं मिला और वो आदमी बूढ़ा होकर मर गया तो फिर उसको न संसार का सुख मिला न भगवान मिला। अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट। भगवान कहते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण के मार्ग पे थोड़ा चला तो उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च के गंभीर नियम पालकर स्वर्ग की प्राप्ति की जाती है वो इस धर्म के रास्ते चलने वाले को तो मुफ्त में मिलता है और स्वर्ग का सुख भोगकर फिर वो पूर्व काल के संस्कार के अनुसार जहाँ भी कहीं श्रीमान के लिए घर अथवा किसी श्रेष्ठ योगी के कुल में जन्म लेकर वो चल पड़ता है। तो भगवान कहते कि इस धर्म पर तुमने चार कदम चल रख दिए तो घबराना नहीं कि मेरा क्या होगा। अगर भजन में लग जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा करूंगा तो मेरा क्या होगा, अच्छा जरा रिटायर हो जाऊं फिर आराम से भजन करूंगा, जरा ऐसा कर दूं फिर ये करूंगा। नहीं नहीं, मनख मजूरी ना राखे तो क्या राखे गो राम। मन लगे चाहे न लगे फिर भी ऑफिस में पगार चालू हो जाता है, ठेकेदार के यहाँ दाढ़ी चालू हो जाती। ऐसे ही भगवत सुमरण भगवत जप भगवत ध्यान और भगवत संबंध के निमित्त तुम जब प्रेम भरा व्यवहार करते हो समता भरा व्यवहार करते हो तो तुम्हारा धर्म केवल माला तक ही सीमित नहीं है, तुम्हारा धर्म केवल मंदिर की मूर्ति तक सीमित नहीं, लेकिन तुम्हारा धर्म जिस सृष्टि को सत्ता परमात्मा की सत्ता से जो सृष्टि धारण कर रही प्रकृति जो सारे ब्रह्मांड को धारण कर रहा है उसके निमित्त तुमने थोड़ा सा भी धर्म किया तो वो दुर्गति होने नहीं देता। समता रूपी धर्म। एक बार मनु और शत्रुपा यात्रा कर रहे थे घने जंगल से पसार हुए। रात्रि को अरण्य निवास करने की नौबत आई। घनघोर रात्रि थी, वहां कोई ब्रह्म राक्षस रहता था। देखा कि दंपति को अपना शिकार बनाऊं। मनु महाराज ने देखा कि अब यहां कोई रक्षक नहीं, तुरंत चालू कर दिया समता रूपी धर्म का जप। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचितम जगत्याम जगत। ये जो कुछ है सब भगवान से भरा है, इस सारे जगत में मेरे परमेश्वर के सिवाय और किसी की भी वास्तविक सत्ता नहीं। मेरा परमेश्वर ही सबका प्रेरक है, नियामक है, कर्म के फल का देने वाला है। भगवान ने देखा कि ये तो मुझ पर छोड़कर बैठ गए। चतुर्भुजी नारायण आए और राक्षस को भगाया और मनु महाराज को दर्शन दिया। प्रीति एक जगह जब होती है तो गंदी हो जाती है। मुझे ये वस्तु मिली और पड़ी रहे तो हो गई आसक्ति गंदी। मुझे ये व्यक्ति मिला और बना रहे तो प्रीति हो गई एक खड्डे में। मुझे ये पद मिला प्रतिष्ठा मिली बनी रहे तो पड़ गई इस एक गहरे कुप में। लेकिन मुझे जो मिला है वो देने वाले का है और देने वाले का जो है ऐसी उदारता से देता है कि लेने वाला समझता ही नहीं कि देने वाले की चीज देने वाले की चीज उसकी मर्जी से उपयोग करने पर वो प्रसन्न होता है, देने वाले की चीज अपनी नालायकी से बिगाड़ करने से वो दोबारा देने में ही चकता है। तो देने वाले ने जो अक्ल दी, बुद्धि दी, धन दिया, कुछ दिया, उसकी आज्ञा के अनुसार उसका उपयोग करने से वो और देता है। मुनीम को या बेटे को तुमने कुछ पैसे दिए और तुम्हारी इच्छा के अनुसार उसका उसने ठीक उपयोग किया तो आप और संपत्ति दोगे, और उसने जाकर लोफरपाई में पैसे लगा दिए तो आप उसको और संपत्ति नहीं दोगे। लेकिन आपके सिद्धांत के अनुसार लगाया तो आप और संपत्ति तो दोगे, वारिश आपका बेटा आपकी संपत्ति का हो जाएगा। ऐसे ही भगवान और संपत्ति तो देते लेकिन अपने आप को भी दे डालते, उसके हृदय में पूरे रूप से प्रकट हो जाते। फिर भगवान और वो दिखते दो हैं लेकिन एक हो जाते हैं। पूरा प्रभु आराध्या पूरा जा करना नानक पूरा पाइए पूरे के गुण का। इसलिए कहते हैं कि दुनिया का सुख पाने के लिए ईश्वर को छोड़ना महामूर्खता है। ईश्वरीय सुख पाने के लिए दुनिया के सुख को लात मार दिया तो कोई परवाह नहीं। दुनिया का सुख ईश्वर प्राप्ति के लिए जगत को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन जगत को पाने के लिए ईश्वर को मत छोड़ना। क्योंकि जगत किसी को पूरा मिला नहीं और थोड़ा बहुत मिला तो टिका नहीं, और ईश्वर को पाने के लिए लगे तो ईश्वर तो चैतन्य है, जगत की वस्तु तो जड़ है। जड़ वस्तु में तो अपनी मेहनत और अपना प्रारब्ध चाहिए, और चेतन को पाने के लिए अपनी थोड़ी सी प्रीति और बाकी की उसकी कृपा मिल जाती है, काम बन जाता है। एक कंगाल सम्राट से दोस्ती कर ले तो कंगाल अपनी योग्यता के अनुसार सम्राट की सेवा करेगा, लेकिन सम्राट जब उसके घर सम्राट आ गया कंगाल के घर तो कंगाल ने अपने बिस्तर अपने बिछौने अपनी योग्यता के अनुसार उसका सम्मान कर दिया। लेकिन कंगाल जब सम्राट के यहाँ जाता है तो सम्राट अपने तरफ से देगा उसको। ऐसे जीवात्मा तो है कंगाल, हे नाक तू सुख दे, हे जीभ तू सुख दे, हे सेक्स तू सुख दे, तो कंगाल है कमबख्त। हे पान मसाला तू सुख दे, हे फलाना तू सुख दे, हे सिगरेट निगुड़ी तू सुख दे, हे ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक तू सुख दे, ये तो है सुख का कंगला। अब वो सुख मांगता फिरता कंगाल। अब वो भगवान सच्चिदानंद से थोड़ा अपना जो कुछ यूं लेता ईश्वर को अर्पण करे, ले तू सुख ले, मैं सुख नहीं लेता तू सुख ले। भोजन भगवान को अर्पण, जल भगवान को अर्पण, भगवान को अर्पण करके खा तो भगवान बोलेगा तू अपना कंगालियत से भी मेरी सेवा करता है तो ले, मैं अपने तरफ से तेरे को चखा दूं, ले यार। इसलिए भोजन करना पेट भरने का, जो पेट भरने के लिए भोजन करते हैं वो पाप खाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जो स्वाद के लिए भोजन करते वो पाप खाते हैं, लेकिन जो भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनाते खाते हैं वो प्रसाद पाते हैं। मतलब क्या हुआ कि स्वाद के लिए आप खाते पाप खाते, क्योंकि वासना बढ़ेगी। पेट भरने के लिए खाते तभी भी वासना, पेट भरने की वासना है, लेकिन भगवान का उद्देश्य बना दिया फिर जब बनाते हैं तो तुम्हारी वासना नियंत्रित होती है, तो वो प्रसाद बन गया, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनाएगा, परमाणु दिव्य बनाएगा, भाव दिव्य बनाएगा। इसलिए घर में भोजन बनाओ ही मत, जब भी बनाओ तो भगवान के लिए प्रसाद बना दो, तो आपका चिंतन दृष्टि वासना नहीं उद्देश्य की हो जाएगी। तो बनाने से तुम्हारा भाव तो शुद्ध होगा लेकिन उस भोजन में परमाणु भी अच्छे पड़ेंगे। भगवान को, ठाकुर जी को, गुरु जी को भोग लगाने के लिए बनाना।
श्याम सुंदर तेनु भोग लगावा तेरा दिया मैं तेनु ही दियावा श्याम हरि तेनु भोग लगाया। हम बच्चे थे ना तो हम अपनी जो पूजा का जगह था तो जो भी हमारी थाली होती हम भगवान के आगे रखते फिर भोग लगाते। बाद में तो जहाँ सिद्धपुर गए ना तो घर में फोटो थे सब लोग अब देखे कि आप भगतड़ा भगतड़ा कहें से तो चलो अब मानसिक पूजा कर लेते। एक एक भगवान के नाम का एक एक कोर हम खा लेते थे। ये कृष्ण जी को लो ठाकुर जी खाओ, फिर शिव जी की मूर्ति थी बड़ी, फिर झूले लाल थे, फिर माता जी थी, फिर वो थे, ऐसी कथा थी। एक एक कोर सब के नाम का उनको दे देते, फिर एक दो कोर बचते थे मैं अब मैं खा लेता हूँ, बड़ा मस्ती से रहते थे। उन्हीं दिनों में एक माई आई, बोलिए भगवान सुधाई, दो पुत्र हैं जेल में, बोले आंसू सुख पाएंगे निर्दोष। चलो सच्चिदानंद का उद्देश्य बना, जो बोला वो लकीर कर दिया उसने। उस समय तो बाबा जी नहीं थे, एक साधारण लड़का थे, लेकिन माई देखती थी कि भगत है वो, मेरे बेटे दोनों जेल में गए, आप बताओ क्या होगा, मैं तो दुखी हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आ जाएंगे, चिंता नहीं करो, भगवान दया करेंगे। और उनके बेटे निर्दोष छूट के आई और माई मेरे पास आई कि अरे वही लड़का तूने जो बोला ऐसा हो गया है। मैं कहा किसी को बताना मत, करने कराने वाला वही है, तो मेरा नाम लेके मेरे पीछे लोग लग जाए तो भक्ति फिर भक्ति कहाँ होगी। फिर तो उसी समय वह हवाई में फंस जाते हैं, चुप चुप वही करता कराता है। देने वाला दे रहा दिन और रैन, लोक मुझे दानी कहे उस लिए नीचे नैन। करने वाला कर रहा है, सच्चिदानंद परमेश्वर सभी कहे। अभी तुम इतने सारे इधर आए या सुन रहे हो तो ये उसी की लीला है। नारायण नारायण नारायण। नारायण का मतलब क्या बाबा जी? नर नारी का अंतर आत्म रूपी अयन जो परमात्मा है उसी का नाम नारायण है। जहां सारे साधन एक हो जाते, स्वाधीनता का संतोष, विश्राम का रस और प्रेम का दरिया उभरे, वह परमात्मा पद है, वही उद्देश्य है। जो भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करता वह इच्छा रहित उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो जाता है। जो अपने मन को वश में रखने के लिए ध्यान अभ्यास करता है वह उद्देश्य पूर्ति है। योगी जुंजित सतत आत्मानं रहसी स्थिता है, एकाकी यतजित आत्मा निराशिर परिग्रह। भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करता, कर्तव्य बुद्धि से करता है, इच्छा रहित हो अंतःकरण तथा शरीर को धर्म के अनुकूल संयत रखता है। ऐसा योगी अकेले एकांत में स्थित होकर मुझ में निरंतर लगाए मन को मुझे पा लेता है।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूँ, मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि वासना से रहित होना ही परम कल्याण है।
वशिष्ठ बोलते, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया, लोग कथा सुन सुन के चले जाते, मेरी बात मानते नहीं, वासना पूर्ति के पीछे लग जाते हैं और उससे कोई अंत नहीं होगा। जन्म का अंत हो जाएगा, शरीर का अंत हो जाएगा, दुखों का अंत नहीं होगा। दुखों का अंत करने का उपाय सीधा बताते, लोग मानते नहीं, समझते नहीं, समझते थोड़ी देर ताली बजा के चले जाते। अहो रूपम अहो ध्वनि, क्या आवाज है, क्या कथा है, हमने क्या तुम्हारी तालियां है, वाह भाई वाह। हाँ जी,
हे राम जी, चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो या द्वादश सूर्य इकट्ठे होकर उदय हो तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता।
हजार सूरज और हजार चंदा चढ़े फिर भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता, अंधकार नहीं मिटता। सत्संग से ही अंधकार मिटता है, ना समझी मिटती है। और सारे तीर्थों का उसने स्नान कर लिया, सारे यज्ञ कर लिए, सारे दान दे डाले, जिसने एक क्षण भी आत्म परमात्म तत्व की कथा सुनकर मन को उस उद्देश्य स्वरूप आत्मा में शांत किया, इतना भारी पुण्य है। आज की कथा का पुण्य कोई कम नहीं, बड़ा भारी लाभ है, अनंत फल। जिस फल का अंत न हो वो अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल।
हे राम जी, जब स्वरूप को जानकर आत्मा में स्थित हो तभी हृदय का तम नष्ट हो जाएगा,
हृदय का अंधकार मिट जाएगा, अपने सच्चिदानंद स्वभाव को ज्यों का त्यों जान लेगा, फिर खाएगा पिएगा लेगा देगा, व्यवहार तो वैसे ही करेगा लेकिन अंदर से सब बदल जाएगा, समझ बदल गई, बस नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले।
हे राम जी, यदि जो तुम सहस्र वर्ष दारुण तप करो अथवा लीलावत कोई आपको शिलासम चूर्ण करे, समुद्र में प्रवेश करे या बड़वाग्नि में प्रवेश करे, गड्ढे में गिरे या खड़क धारा के सम्मुख युद्ध करे, अथवा सदाशिव ब्रह्मा विष्णु या बृहस्पति दया कर तुम्हें उपदेश दे और पाताल पृथ्वी स्वर्ग इत्यादिक और स्थानों में भी जावे, तो भी वासना का उपशम करने जैसा उपाय कल्याण के निमित्त और कोई नहीं
है। है ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रसन्न होकर तुमको उपदेश दें और दर्शन दें, अथवा तो तुम तलवार लेकर सारी पृथ्वी के शत्रुओं को मार डालो और सारी धरती के राजा बन जाओ, अथवा तो ऐसी सिद्धि मिल जाए कि जलाशयों में घुसकर सारे जलचरों थलचरों को जान लो, फिर भी उतना सुख नहीं मिलेगा जितना वासना निवृत्ति से और उद्देश्य प्राप्ति से सुख मिलेगा। मैं कैसी चीज लाया तुम्हारे लिए? ब्रह्मा विष्णु महेश और बृहस्पति दया करके दर्शन दे और उपदेश दे, फिर भी वासना निवृत्ति के सुख के आगे वो सब नन्ना है। जो वासना निवृत्ति से जो सुख और समझ मिलती है गजब की, मैं वो सुख और वो समझ लेके आया तुम्हारे पास। एक मुखिया का लड़का था, बाल विवाह का जमाना था, तो मुखिया ने अपने गोद में लेके बेटे की शादी कराना था, तो नन्ना सा तो छोरा था और नन्ही सी बहू, फेरे फिरने के लिए ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा मुखिया, तो लड़के को गोद से खड़ा करा, बेटे फेरे फिर, और लड़का तो भागा, अरे कहाँ जाता है, फेरे फिर, बोले पापा फेरे तुम ही फिर लेना, मैं बंदरिया देखने जाता हूँ। अरे छोरा तेरा विवाह हो रहा है और तेरा देखो पल्ला बल्ली बांध रहे हैं, और बोले पिताजी तुसी बांध लो, अरे फेरे फिरने तो शादी हो रही तेरी, बोले मैं तो बंदरिया देखने जा रहा हूँ, देखो मदारिया डुग डुग कर रहा, मैं बंदरिया देख के आता हूँ, तुम कर लेना बाकी का। अब बताओ छोरे को पता ही नहीं कि शादी हो रही, ऐसे ही इन छोरों को भी पता नहीं कि शादी हो रही। बंदरियां देखने जाएंगे, बंदर और बंदरियां देखने जाएंगे, एक दूसरे के चेहरे देखने जाएंगे, कौन आया, तुम कहां से आए, तुम्हारा क्या नाम है, कैसा है, बस जाओ माकड़ा जुआ जू से। અલે ફેરા ફર તું મુખીનો દીકરો છે બેટા કે હા બાપા, પણ મારે માકડા જોવા જવું છે, લે મારો દીકરો માકડા જોવા, આટલો મોટો થયો 12 વર્ષનો, લે પાડો થયો ને અત્યારે ફેરા ફરવાનો, કે ના ના મારે તો માકડા જોવા છે, લે તો માકડા જોવા માટે બેઠો હતો, આટલા બધા ગરેડા પહેરીને આવું બધું, માકડા જોવા માટે આવ્યો હતો, આટલું બધું આ કર્યું છે ને, કર્યું તો કર્યું પણ મારે તો માકડા જોવા છે, મું કે બોલડી વાઠી ડ્યોમાં નચ્છા આવ્યા। अरे भाई धाड़ो सुख जे ना मार तो माकड़ा जो आजू छे ना चाले।
हे राम जी, जैसे केसरी सिंह पिंजड़े को तोड़कर निकल जाता है, तैसे ही ज्ञानवान पुरुष भोग वासनाओं के बंधन को तोड़ डालता है। जैसे रंक को त्रिलोकी का राज्य मिलने से वह आनंद को प्राप्त हो, तैसे ही ज्ञानवान को आत्मा के साक्षात्कार होने से परमानंद प्राप्त होता है और वह परम निर्मल लक्ष्मी से शोभायमान होता है। ज्ञानवान पुरुष अपने आप में नहीं समाता, जैसे महाकल्प का समुद्र नहीं समाता और जैसे मेघ जल को त्याग कर मौन हो जाता है, तैसे ही ज्ञानवान वासनाओं को त्याग कर आत्म मौन हो जाता है।
सदा समाधि संत की आठों पहर आनंद, अकलमता कोई उपजा किने इंद्र को रंग। इंद्र का वैभव भी कंगला है, ऐसे वैभव को पा लेता है उद्देश्य की पूर्ति वाला। आजकल वासना की पूर्ति को उद्देश्य बना रहे हैं, नहीं, उद्देश्य में और वासना में फर्क समझो। सच्चिदानंद को पाना उद्देश्य है और नश्वर को पाना वासना है। जो पाकर नष्ट हो जाए वह है वासना, और जो जानकर सदा सुखी हो जाए वो है उद्देश्य। जो सदा रहने वाले सुख को पाए वो है धर्म, और जो नश्वर को पाए वो है वासना। बस